अभिमन्यु और उदय की बातें सुनकर इप्सिता अपने मन में बहुत कुछ सोच रही थी। इसी बीच उसका ध्यान भंग हुआ क्योंकि वो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए चल रही थी और सामने सीढ़ियां थी। उसने ध्यान नहीं दिया और लड़खड़ा गई। इप्सिता का पैर लड़खड़ाया। इससे पहले कि उदय उसे संभाल पाता, अभिमन्यु ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। संभाल कर, अभिमन्यु ने कहा। उदय ने अभिमन्यु को इप्सिता को संभालते देखा। वो रुक गया और मन ही मन बोला, ये देखकर अब हमें यकीन हो गया है कि हमें इप्सिता की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुंवर सा उसे इसी तरह संभाल लेंगे। इप्सिता, आप ठीक है ना? अभिमन्यु ने पूछा। जी, हम ठीक हैं, इप्सिता ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। फिर वो उदय की तरफ देखकर बोली, उदय भाई, हम चलते हैं। ठीक है, वहां पहुंचकर हमें मैसेज कर देना, बाय, उदय ने प्यार से सिर हिलाकर कहा। अभिमन्यु और उदय ने एक दूसरे से गले मिले और हाथ मिलाए। फिर वे दोनों सीधे फ्लाइट की तरफ बढ़ने लगे। उदय वीर उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर में एयरपोर्ट की सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अभिमन्यु इप्सिता के साथ प्लेन की बिजनेस क्लास में पहुंचा। इप्सिता ने देखा कि बिजनेस क्लास में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। ये देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने अभिमन्यु से कुछ नहीं पूछा और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। उसे पता था कि बिजनेस क्लास काफी महंगा होता था और ज्यादातर लोग इसमें सफर नहीं करते थे। अभिमन्यु और इप्सिता की सीटें अगल बगल थीं। इप्सिता बहुत खुश लग रही थी। उसने मन ही मन कहा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हमने तो अपने एग्जाम को लेकर सारी उम्मीद छोड़ दी थी। आखिरकार हमें अपना एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मिस्टर अभिमन्यु की वजह से। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। वो उसे धन्यवाद कहना चाह रही थी। जैसे ही उसने अभिमन्यु की सीट की तरफ देखा, वो खड़ा था और अपना कोट उतार रहा था। उसकी शर्ट के ऊपर के तीन बटन खुले हुए थे, जिससे उसका सीना साफ नजर आ रहा था। अभिमन्यु की बॉडी देखकर इप्सिता एक पल के लिए हैरान हो गई और उसकी नजरें उसके सीने पर ही टिक गईं। अभिमन्यु ने इप्सिता को देखा तो इप्सिता ने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली। उसे इस तरह मुंह घुमाते देखकर अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। इप्सिता ने अपनी सीट पर पीछे होते हुए अपना मुंह छुपाया और सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ओ गॉड, पता नहीं हम मिस्टर अभिमन्यु को ऐसे क्यों देख रहे थे। अगर उन्होंने हमें ऐसे खुद को देखते हुए देख लिया तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे, लेकिन हम तो बस उन्हें धन्यवाद कहना चाहते थे और हमने उन्हें अभी तक धन्यवाद भी नहीं कहा और ऐसी पागलों की तरह अपना मुंह घुमा लिया। हम भी कितने बेवकूफ हैं। इप्सिता ये सब सोच ही रही थी कि प्लेन टेक ऑफ हो गया। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखा। बीच में लगा पार्टीशन था। अभिमन्यु ने साइड में लगे बटन को दबाया और पार्टीशन नीचे सरक गया। अब अभिमन्यु को इप्सिता का चेहरा साफ नजर आ रहा था। इप्सिता ने पार्टीशन को गायब होते देखा और अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। इप्सिता, आर यू कंफर्टेबल? आपको कुछ चाहिए तो नहीं? अभिमन्यु ने पूछा। नो, आई एम फाइन, इप्सिता ने सिर हिलाते हुए कहा। इप्सिता चुप हो गई। अभिमन्यु ने फिर से वही बटन दबाया और पार्टीशन दोबारा उनके बीच आ गया। अभिमन्यु इप्सिता को असहज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पार्टीशन को फिर से बीच में लगा दिया। इप्सिता ने मन ही मन कहा, आई थिंक हमें अभिमन्यु से थोड़ी बात करनी चाहिए। अगर हम इस तरह चुपचाप बैठेंगे तो ये थोड़ा असभ्य लगेगा, और वैसे भी उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, और एक बार नहीं कई बार। हमने उन्हें अभी तक ठीक से धन्यवाद भी नहीं कहा है। खैर, हमें उनसे कुछ तो बात करनी चाहिए। इतना सोचकर इस बार इप्सिता ने पार्टीशन हटाया। क्या हुआ इप्सिता, कुछ चाहिए क्या आपको? अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, वो हमें आपसे कुछ कहना था, इप्सिता ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, बोलिए, अभिमन्यु ठीक से अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा। वो भी उसकी तरफ देख रहा था। जैसे ही इप्सिता की आंखें अभिमन्यु की आंखों से मिली, वो थोड़ी घबरा गई। उसने तुरंत अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, एक्चुअली हमें आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू सो मच आपने, इप्सिता अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। प्लीज इप्सिता, हमने आपसे कहा था ना कि हमें आपकी थैंक यू की जरूरत नहीं है। आप अब हमारी जिम्मेदारी है, तो हमें तो आपके बारे में सोचना ही होगा, और अगर हम आपके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? इसलिए आपको हमें कभी भी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, अभिमन्यु ने उसे रोकते हुए कहा। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर एक पल के लिए चुप हो गई। वो उसका कोई जवाब नहीं दे पाई। फिर उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, हम आपसे एक बात पूछें? बिल्कुल, पूछिए ना, अभिमन्यु ने कहा। इप्सिता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, वो एक्चुअली हमें आपसे ये पूछना था कि आपने हमारे और अपने घर वालों को एग्जाम के लिए कैसे मनाया? हमारा मतलब है कि आपकी माँ को हमारे एग्जाम देने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्या? वो इतनी जल्दी हमारे एग्जाम के लिए मान गई, और हमारे माँ बाप, उन्हें आपने कैसे मनाया? क्योंकि हमने तो अपने माँ बाप से कितनी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने हमें साफ मना कर दिया था। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। अभिमन्यु बहुत कम हंसता था। इस बार जब वो इप्सिता की तरफ देखकर मुस्कुराया तो इप्सिता उसके चेहरे की तरफ देखती रह गई, क्योंकि अभिमन्यु बिना हंसे जितना हैंडसम लगता था, हंसने पर वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इप्सिता एक पल के लिए बिना पलके झपकाए उसे देखती रही। अभिमन्यु ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वो एक्चुअली क्या है ना, हम कुंवर सा है तो हमारी बात कोई जल्दी नहीं डालता, और आपके माँ बाप वो तो हमारी कुछ ज्यादा ही इज्जत करते हैं, तो उन्हें मनाना हमारे लिए आसान था। लेकिन हाँ, माँ को मनाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने आपसे जो वादा किया था इसीलिए अपना वादा तो हमें पूरा करना था। जैसे तैसे हमने माँ को भी मना लिया, लेकिन हमें आपकी माँ बहुत स्ट्रिक्ट लगती है, गुस्सा भी करती है ना, तो फिर वो आपकी बात कैसे मान गई, इप्सिता ने पूछा। वो एक्चुअली मुंबई में हमारा एक प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम कर रहे थे, और अब वो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, तो उसी सिलसिले में हमें मुंबई जाना था। तभी हमारे दिमाग में ये बात आई कि आपका कॉलेज मुंबई में ही है, तो फिर हमने थोड़ी रिसर्च की और माँ को प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और इसी बहाने हम आपको भी यहाँ पर लेकर आ गए, अभिमन्यु ने बताया। अभिमन्यु जिस तरह से ये सारी बातें बता रहा था, उसने बताया कि किस तरह उसने प्रोजेक्ट का बहाना बनाया और अपनी माँ को समझाने में लग गया। इप्सिता सारी बातें सुनकर खुश हो रही थी, और उसने मन ही मन कहा, सच में हमने तो अभिमन्यु को बहुत गलत समझ लिया था। हमें तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने दो दिन तक हमें कोई कॉल नहीं की, शायद वो अपनी बात भूल गए हैं, लेकिन उन्हें तो सब कुछ याद था। बल्कि वो इन सारी चीजों को लेकर प्लानिंग कर रहे थे कि वो कैसे हमें एग्जाम के लिए ला सकते हैं। सच में अभिमन्यु बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी कितनी बार मदद की और हमने एक बार भी उनकी मदद नहीं की, यहाँ तक कि हमने शायद उनके लिए कुछ खास भी नहीं किया, इप्सिता ये सब सोच ही रही थी। तभी अभिमन्यु ने इप्सिता के चेहरे के आगे अपना हाथ लहराते हुए कहा, क्या बात है इप्सिता, अब फिर से क्या सोचने लगी आप? नहीं कुछ नहीं, वो बस आपने हमारे लिए इतना कुछ किया और हमने तो कभी कुछ नहीं किया आपके लिए, और आप हमें ठीक से धन्यवाद नहीं बोलने देते, इसीलिए बस हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बहुत स्वार्थी हैं, इप्सिता ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। ये बात बोलते हुए इप्सिता थोड़ी मायूस हो गई। अभिमन्यु ने उसे समझाते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप इतना क्यों सोच रही हैं इस बारे में, वैसे भी अब तो सबने परमिशन दे दी, और अगर आप स्वार्थी होती तो शायद सबकी परमिशन मिलने का इंतजार नहीं करती, पहले ही चली जाती अपने एग्जाम देने के लिए, और वैसे भी कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, शायद आपके लिए आपकी पढ़ाई होगी।
अभिमन्यु की ये बातें सुनकर इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसकी सारी बातें उसे सही लग रही थीं, लेकिन अभिमन्यु इतना समझदार होगा ये उसे नहीं पता था। वो उससे ज्यादा प्रभावित हो चुकी थी, इसीलिए बिना कुछ बोले चुपचाप उसकी तरफ देखती ही जा रही थी। तभी अभिमन्यु ने उसका नाम लेकर बुलाया, लेकिन इप्सिता खोई हुई थी। अभिमन्यु ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, फिर से कहीं खो गई आप, ऐसे क्या सोचने लगती हैं बीच बीच में बात करते हुए। अभिमन्यु का हाथ जैसे ही इप्सिता के हाथ पर लगा वो चौंक गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। क्रमशः